हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के YouTube चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो टीवी चैनल 305 SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।
एलेपो में रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई परिवारों का कहना है कि हाल के दिनों में सीरिया में विद्रोही बलों द्वारा शुरू किए गए हमले के बाद वो बढ़ते हुए खतरे को लेकर चिंतित हैं। सीरियाई बल उत्तर पश्चिम में इडलिब और दक्षिण में हमा जैसे प्रांतों में दर्जनों कस्बों और गांवों को नियंत्रित करके एलेपो में आगे बढ़ने में कामयाब हुई है। मेलबर्न की ईजी स्ट्रीट हत्याओं में वांछित व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया वापस आने के लिए विमान में सवार हो गया है। 1977 में सुजेन आर्मस्ट्रॉन्ग और सूजन बार्टलेट की मौत के मामले में पेरी कोरोम्बलिस को सितंबर में रोम के लियोनार्डो डाविंसी हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। आर्मस्ट्रॉन्ग और बार्टलेट दोनों दोस्त कॉलिंगवुड के ईजी स्ट्रीट पर स्थित अपने घर में चाकू के कई घावों के साथ मृत पाए गए थे। स्कैम्स यानी घोटालों पर नकेल कसने के प्रयास में फेडरल सरकार ने SMS या टेक्स्ट मैसेजेस भेजने वालों के लिए एक नए रजिस्टर की स्थापना करने की घोषणा की है। इसमें $10 मिलियन का निवेश होगा। इस SMS सेंडर ID रजिस्टर को ACMA यानी ऑस्ट्रेलियन मीडिया एंड कम्युनिकेशंस अथॉरिटी द्वारा विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत टेलीकॉम कंपनियों को जांच करनी होगी कि किसी सेवा या कंपनी का प्रतिनिधित्व करके टेक्स्ट मैसेज भेजने वाला क्या उस नाम के तहत पंजीकृत है या नहीं। अगर भेजने वाले का नाम रजिस्टर में नहीं है तो उस SMS को या तो ब्लॉक किया जाएगा या चेतावनी के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होगा। इस रजिस्टर को 2025 के अंत तक पूरी तरह से लागू करने की तैयारी है। अमेरिकी न्याय विभाग के विशेष वकील ने जो बाइडेन के उस दावे को खारिज कर दिया है कि धोखाधड़ी और बंदूक के आरोपों में उनके बेटे पर अनुचित तरीके से मुकदमा चलाया गया है। इसके चलते जो बाइडेन को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो अपने बेटे को माफ करने के लिए राष्ट्रपति पद की शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे। हंटर बाइडेन के वकील मार्क गेरोगोस का कहना है कि उन्होंने माफी के बारे में राष्ट्रपति से बात नहीं की है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये निर्णय सही था। दक्षिणपंथी और वामपंथी दलों द्वारा प्रधानमंत्री मिशेल बानिये के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद इस सप्ताह के अंत में फ्रांस की सरकार का गिरना लगभग तय है। इस घटना ने यूरोजोन की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को राजनीतिक संकट में डाल दिया है, जिससे इस बात पर गंभीर संदेह पैदा हो गया है कि वार्षिक बजट को मंजूरी दी जाएगी या नहीं। नेशनल रैली के नेता मरीन लेपेन का कहना है कि सितंबर की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री बने बार्निये ने हालात बदतर बना दिए हैं और उन्हें बाहर धकेलने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हुआ तो 1962 के बाद अविश्वास मत से बाहर होने वाली फ्रांस की ये पहली सरकार होगी। और अब खबर भारत से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल भारत का दौरा करेंगे। पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने सोमवार को इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि क्रेमलिन को निमंत्रण मिल गया है। ये यात्रा फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। भारत के इस दौरे की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के YouTube चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो टीवी चैनल 305 SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।